वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की।
तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के सातवें स्कंद के नौवे अध्याय में प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना के श्लोक नंबर 51 को पढ़ेंगे।
श्री नारद उवाच एतावत् वर्णिगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रहरादं प्रणतं प्रीतो यत मन्युर यत मन्यु अभाषतः एतावत् वर्णित गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रहलादं प्रणतं प्रीतो। यत् मन्युमभाषतः एतावत् वर्णित गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रहलादं प्रणतं प्रीतो यत्मन्युर्भाषतः।
श्री नारद उवाच श्री नारद ने कहा एतावत् यहाँ तक वर्णित वर्णन किया गया गुणः दिव्य गुण भक्त्या भक्ति से भक्तेन भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा निर्गुण दिव्य भगवान प्रहलाद प्रहलाद महाराज को प्रणतम भगवान के चरण कमलों की शरण में आया हुआ प्रीत प्रसन्न होकर यत मन्यो क्रोध को वश में करके अभाषत इस प्रकार बोलने लगे। अनुवाद एवं तात्पर्य बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। महान ऋषि नारद ने कहा इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर भगवान नरसिंहदेव शांत हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और दंड प्रणाम करने वाले प्रहलाद पर अत्यधिक दयालु होने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। कृपया दोहराइए महान ऋषि नारद ने कहा इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर भगवान नरसिंह देव शांत हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और दंड प्रणाम करने वाले प्रहलाद पर अत्यधिक दयालु होने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। तात्पर्य यहां पर निर्गुण शब्द महत्वपूर्ण है। मायावादी दार्शनिक परम सत्य को निर्गुण या निराकार मानते हैं। निर्गुण शब्द भौतिक गुणों से विहीन का सूचक है। दिव्य गुणों से पूर्ण होने के कारण भगवान ने अपना क्रोध त्याग दिया और प्रहलाद से बोले। तो यहां पे ये कथा सबको मालूम ही है कि किस तरह से प्रहलाद जब अपनी माँ के पेट में थे कयादु के, तो उनको मारने का प्लान देवराज इंद्र ने बनाया कि भाई ये राक्षस राज हिरण्यकशिपु का पुत्र है और अगर ये पैदा हुआ तो जितना दुख हिरण्यकशिपु ने दिया उससे ज्यादा ये दुख और मिलेगा, तो क्यों ना इसको माँ के पेट में ही मार दिया जाए। तो हिरण्यकशिपु जो है वो तपस्या करने गए हुए थे, तो उन्होंने कयादु को अपहरण कर लिया और प्रहलाद को मारने का उन्होंने निश्चय किया। तो नारद मुनि ने वहां पे आके देवताओं को आश्वासन दिया कि ये राक्षस राज का पुत्र जरूर है लेकिन ये राक्षस नहीं, ये तो महाभागवत है और इसको आप किसी प्रकार का कोई भ्रम ना रखें, कोई कष्ट ना दें। और उनको अपने आश्रम में लेके चले गए। वहां आश्रम में मां के पेट में प्रहलाद महाराज ने महान नारद मुनि ऋषि द्वारा सब भगवत धाम भागवत की और अलग ग्रंथों की सब कथाएं सुनी। और जब वो पैदा हुए तो उन्हें पूरा भगवत ज्ञान और पूरा सब उनको ज्ञान पेट में मिल चुका था। और फिर जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को शंड और अमर की पाठशाला में भेजा और जब वहां से बीच में बुलवाया तो उन्होंने कहा, बड़े प्यार से गोद में बिठाया, प्रहलाद बेटा तुमने पाठशाला में क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि तत्साधु मन्य असुरवर्य देहिनाम। असुरवर्य देवताओं में असुरों में श्रेष्ठ मेरे पिताजी। तत्साधु मन्य असुरवर्य देहिना सदा समुद्विघ्न असद्ग्रहात धियाम। जिन लोगों ने ये शरीर धारण किया है हमेशा वो डिस्टर्ब समुद्विघ्न। क्यों क्यों वो हमेशा इस शरीर में देह को उन्हें मिला इस मृत्युलोक के संसार में और हमेशा दुखी हमेशा परेशान, ऐसा क्यों है? क्योंकि असत ग्रहात धियाम, उन्होंने सारा दिमाग इस चीज में लगा दिया कि इस संसार में कैसे मैं यहां सुखों के विषयों के साधन से कैसे यहां परमानेंटली रह सकता हूं, कैसे एंजॉय कर सकता हूं। तत्साधु बन्य असुर असुरवर्य देही नाम सदा समुद्र असत ग्रहात धियाम। तो ये यहां पे जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं वही चीज है कि आज सारा संसार सारे जीव जंतु ये पूरी पूरी सृष्टि इसी चीज में लगी हुई है। आहार निद्रा भय मैथुनम, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, खाना पीना सोना अपने आप को बचाना और फिर प्रोक्रिएशन जो संभोग। तो ये इन्हीं चीजों में सब लोग लगे। इवन जैसे भागवतम में बताया, लोके वविया अमिष मध्य सेवा नित्य ही जंतुर नहीं तत्र प्रचोदनात्, के शास्त्रों में क्योंकि लोके वविया आमिष जीव जंतु सारे वविया सेक्स लाइफ आमिष मीट ईटिंग, लोके वविया आमिष मध्य सेवा ड्रिंकिंग, और इसीलिए शास्त्रों में इन बातों को नहीं बताया गया तो लोग अपने आप से लगे हुए हैं। अब उसी बात को शास्त्रों में बताने लगे तो और लग जाएंगे। शास्त्रों में उन चीजों से निकलने की बात बताई, उनसे बाहर आने की बात बताई। कि इन चीजों को कैसे धीरे धीरे रेगुलेट करके कंट्रोल करना है। मैं जब अमेरिका में पीएचडी कर रहा था, वहां यूनिवर्सिटी ऑफ आइडाहो एक है, उसके बगल में एक दूसरी यूनिवर्सिटी है 8 किलोमीटर दूरी पे, दोनों स्टेट यूनिवर्सिटी है, वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी। और वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक आलोक डे नाम के साइंटिस्ट थे जो बांग्लादेश के थे, और वो चूहों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। मैं एक बार वहां मेरा जाना हुआ एक प्रोग्राम में, तो वो मुझे अपनी लैब में लेके गए। तो मैं सोचता था कि भागवतम में ये कहा कि लोके वव्या आमिष मध्य सेवा, अब जंतु को मध्य सेवा, भाई ये तो मान लिया कि जंतु आहार निद्रा भय मैथुनम, लेकिन मध्य सेवा के बारे में मुझे थोड़ा डाउट था कि ये मध्य सेवा में जंतु कहां से आ गया। तो उनकी रिसर्च जो थी वो इस बात के ऊपर थी, उन्होंने छोटे छोटे पिंजरे बनाए हुए थे, बड़े बढ़िया एयर कंडीशन से फैसिलिटी थी, तो उसके अंदर एक इंजेक्शन सा लगाया था, उसमें जैसे बॉल पेन की टिप के ऊपर जब हम दबाते हैं तो उसमें इंक निकलती है, ऐसे ही उसमें अरेंजमेंट था कि चूहा जब अपने मुंह को वहां लाएगा और उस टिप को दबाएगा तो उसमें से एक लिक्विड निकलेगा जो कि वो खाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो वो लगाई, और एक्सपेरिमेंट में एक इंजेक्शन की सिरिंज वहां उनके छोटे से पिंजरे में इस बात की लगा, उसमें वाइन थी, और पता ये लगा, और कैमरे लगे हुए ऊपर तमाम, अब रात में तो बैठ नहीं सकते, तो कैमरों में रिकॉर्ड किया गया कि चूहों ने इतनी शराब पी ली, इतनी शराब पी ली कि चूहियां से बाहर पिटाई करी, बच्चों के चांटे मारे, और उसके बाद में वो बेहोश होके वहां पड़े रहे, और जो जो खाने का भी वाली सीन थी उस दिन खाना नहीं खाया इतना, क्योंकि पीत नहीं रखी थी। तो चूहों तक के अंदर ये टेंडेंसी पाई गई कि उन्हें भी ये वाइन में स्वाद आया। इस तरह देख लो कैसी कंडीशनिंग है जंतुओं की, हम लोगों की कितनी कंडीशनिंग है कि इन चीजों से निकलना कितना कठिन है। क्यों कहते हैं भाई शराब मत पियो, जैसे हम लोगों कई बार इस्कॉन वालों को लोग ये कह देते हैं कि भाई आप लोग ना तो आप खाते मांस कुछ चिकन फिकन खाते हो, ना ऐसे शराब वराब पीते हो, और फिल्में नहीं देखते हो, और क्या आपकी लाइफ कितनी मिजरेबल है, आपका एंजॉयमेंट। तो वो तो हमारे पे कृपा कर रहे हैं, हम उन पे कृपा कर रहे हैं कि देखो कितनी सिंफुल लाइफ है इन लोगों की, क्या जिंदगी है इन लोगों की, नरक से बदतर। तो यहां पे जो बात आई तात्पर्य में, प्रभुपाद जी ने कहा कि इस श्लोक में भक्त्या भक्तेन निर्गुणः, तो निर्गुण जो वर्ड आया है उसको प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया दिव्य भगवान। दिव्य वर्ड का मतलब यहां पे यह है कि भगवान हमारी इन पंचेंद्रियों से ऊपर है। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे, अक्षज मतलब हमारी इंद्रिया, अधो मतलब इंद्रियों से ऊपर परे, इसलिए वो यहां पे दिव्य, उनका ट्रांसेंडेंटल, भगवान का दिव्य स्वरूप हमें अपनी इन इंद्रियों के द्वारा नहीं मिल सकता। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संतत सदैव हृदयेषु विलोकयंती येन श्याम सुंदर चिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेम का अंजन लगा के भक्त लोग, भगवान के जो भक्त लोग हैं उनका एक ही सुख है, भगवान के विग्रह को देखना, भगवान के विग्रह में भगवान को तैयार करना, तरह तरह के उनके लिए फूल और उनके तरह तरह कपड़े और उनका जो सब चीजों का बढ़िया अच्छी खुशबू वाले इत्र और ये तमाम चीजें। क्यों सब? क्योंकि भक्तों को उसमें बड़ा सुख है, कोई बोझ नहीं है। हम लोग सुबह सुबह जब माला करते हैं तुम लोग कोई बोझ में दबे हुए हैं? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यही रास्ता है। इसी रास्ते कुछ भी, सबसे जब मैं कभी कभी कोई मुझे फोन पे इधर उधर से कॉल कर देते हैं सुबह माला के समय पे, तो मैं सबको बता रखा, मैंने कहा सबसे मुख्य समय मेरे जीवन का है कि मंगल आरती के तुरंत बाद ये माला 5:30 से 7 बजे के बीच में खत्म कर। जिनकी सेवाएं हैं वो और किसी टाइम करते हैं निश्चित ही, लेकिन हम लोगों की लाइफ में ये समय इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बड़ी कोई प्रायोरिटी नहीं है। कितने भी मुख्य इंपॉर्टेंट कितनी भी जरूरत की चीजें हो, ये समय इस आत्मा के लिए है, भगवान से जुड़ने के लिए। इस समय में हम कुछ नहीं करते, सिर्फ माला करते हैं, माला पे ध्यान करते हैं, और जितनी भी दुविधाएं हैं जीवन में, जितनी भी समस्याएं हैं जीवन में, वो समय आने पे अपने आप धीरे 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 इस माला के सहारे हम लोग पार कर लेते हैं। ये सबसे मुख्य बात, और यही एक समस्या है कि हम लोगों का माला में एकदम से मन नहीं लगता, चाहे तो हम नए भक्त हों और चाहे हम पुराने भक्त। पुराने भक्तों का तो और भी कम लगता है, क्योंकि नया भक्त तो जैसे हम लोग खाना खाने बैठते हैं, तो मेरी वाइफ जब मुझे बथुए का पराठा कल दिया तो और आलू की सब्जी दी, तो मैंने एक पराठा तो हवा की तरह उड़ा दिया, और दूसरे पराठे के बाद मुझे लगा कि यार सब्जी में नमक कम है और पराठे में भी नमक कम था, तो पहले में पता ही नहीं चला। तो जो नए भक्त होते हैं उनको शुरुआत में माला करना एकदम अट्रैक्ट करता है, लेकिन धीरे 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 वो जो जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी माला करने की, वो कम हो, क्योंकि अपराध भी हो जाते हैं, 10 अपराध भी हैं, वैष्णव के प्रति अपराध भी हैं, तो इन सबसे बच के माला करनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर जो निर्गुण वाली बात आई कि दिव्य भगवान, तो भगवान को कई बार लोग निर्विशेष, शिल प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में है ना, नमस्ते सरस्वते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। एक बार मुझे मिले कोई प्रभु जी, वो बोले भाई आप इस कौन में है, लेकिन इंडिया में तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यहां तो सब लोग भगवान का नाम जानते ही हैं। और प्रभुपाद जी ने तो, प्रभुपाद जी को तो इतने नॉलेजेबल थे वो, कि प्रभुपाद जी के तो प्रणाम मत में पाश्चात्य देश ताड़ने, उनको उतारो यहां के, आप बेकार में टाइम खराब कर रहे हो, हमें सब पता है। तो मैंने यही कहा कि ये पाश्चात्य जो देश है वो एक स्वभाव, एक मेंटेलिटी है, एक कॉन्शियसनेस है, बैग बोरो स्टील, कहीं से भी लाओ पैसे लाओ, नहीं हो तो चुरा लो, छीन लो, धोखा दे दो किसी को, और क्या करना कि जो चर्वक मुनि ने कहा, ये मेंटेलिटी है चर्वक मुनि वाली पूरे विश्व में, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवम सुखम जीवेत अस्य भस्मस्य देहस्य कुतः पुनर आगमन भवेत। ऋण ले लो, क्रेडिट ले लो, जैसे आजकल जैसे अमेरिका के अंदर तो पूरी जिंदगी ही क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतारने में निकल जाती है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े सेमिनार, बड़ी बड़ी क्लासेस, बड़े बड़े ट्यूटोरियल, बड़े बड़े काउंसलिंग के, फाइनेंशियल काउंसलिंग गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करती है लोगों को कि भैया इस क्रेडिट कार्ड को मत यूज करो, लोग कर्जे में दबे पड़े हुए वहां पे, क्योंकि रेकलेस मतलब गए बाजार में क्रेडिट कार्ड देखो, उस वक्त तो लगता नहीं, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का दिया, एक धमाके जब बिल आया तब आंखें खुली, और तो वो एक वहां का सिस्टम ऐसा बना दिया, कंज्यूमरिज्म का कल्चर ऐसा बना दिया कि आदमी को पता ही ना लगे, खर्चा करते हुए लगता ही नहीं और सारा खर्च कर दे, फिर जब कर्जा खड़ा हो गया तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घृतम पिबेत मतलब खूब घी खाओ, बढ़िया जो भी खाना पीना है खाओ कर्जा, और जब तक जियो यावत जीव सुखम जीवे तुम, ऐश कोई चिंता नहीं। और फिर ये भी कह दिया कि सारी सारी प्रॉब्लम क्या है आज विश्व में, कि पुनरागमन को कोई मानता ही नहीं, पुनर्जन्म को कोई मानता ही नहीं। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी के अंदर उन्होंने पुनरागमन को हटाया, न्यू टेस्टामेंट में पुनरागमन को तुरंत हटा दिया। अब पुनरागमन को हटते ही, जैसे हम लोग कई बार भगवद गीता बांटते थे तो कोई भी एकदम साइकिल पे आया, व्हाट आप लोग क्या क्राइस्ट में बिलीव नहीं करते, ना करते हैं, तो फिर किसकी क्या जरूरत है? क्राइस्ट में बिलीव करो भगवान के बदले, उसके स्वर्ग में जाओ और कुछ भी करो, कुछ भी करो। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी लोग बहुत चीजें उल्टी सीधी करते हैं और फिर गंगा में स्नान कराते हैं, पाप धुल गए। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी है। क्रिश्चियनिटी में है परगेटरी। परगेटरी का मतलब क्या है? पर्च, कि आपके जो पाप हैं वो सब आज के बाद खत्म। और कैसे खत्म? चर्च में जाओ, कन्फेशन बॉक्स में बैठो, कन्फेशन करो कि ओ क्राइस्ट मैंने गलती कर दी, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, कृपया मुझे माफ कर दो, और $10 डाल दिए डोनेशन बॉक्स में, परगेटरी दे दी, उनको मिल गए पैसे, आपके पाप माफ हो गए, आप फिर गए और फिर जाके पाप करके फिर अगले संडे में आ चुके। जिसको कहते हैं कुंजर शौचव। सुखदेव गोस्वामी ने, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि जो ये आदमी पाप करता है और फिर करते चला जाता है, प्रायश्चित किया पाप किया, प्रायश्चित किया पाप किया, तो ये प्रायश्चित ऐसे है जैसे कुंजर शौचव, हाथी नदी में गया, नहा के आया, बाहर आके फिर मिट्टी फेंक ली। तो ये कुंजर शौचवम की स्टाइल में हाथी की तरह हम लोग नाम ना बला दे पाप बुद्धि, पर हम लोग भगवान के नाम की ताकत पे कोई पाप नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इससे बड़ा कोई पाप नहीं। हिपोक्रेसी प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने मना किया है कि कोई भी हिपोक्रेट ना बने। एक बार किसी में न्यूयॉर्क में प्रवचन में था, तो वहां किसी ने पूछा, प्रभु जी ये बताओ कि एडवांस डिवोटी कौन है, कौन डिवोटी एडवांस? तो मैंने उस पर यही कहा कि एडवांस डिवोटी वो है जो जिस लेवल पे है उससे बहुत नीचे अपने आप को प्रेजेंट करें और हिपोक्रेसी ना करें। हिपोक्रेसी का मतलब है पाखंड, सबके सामने हम कुछ और दिखना चाहते हैं, जब हम एकांत में होते हैं तो कुछ और बन जाते हैं, राक्षस, कोई देख नहीं रहा, बस बहुत ऐसा होता है। अमेरिका के अंदर एक बार हम लोग चर्च पे गए, तो वहां पता लगा वो मॉर्मन चर्च था, तो चर्च में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट आए हुए थे बोलने के लिए, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि भाई ये चर्च में आए हैं, हमने डेनवर से बुलवाया है इनको बोइजी में, और ये एक्सपर्ट हैं, जितने भी चर्च में ये काम करने वाले हैं, फादर हैं, बिशप हैं, ऑल्टर बॉय हैं, ये है वो, जितने भी लोग चर्च में भक्त लोग हैं, ये उनकी काउंसलिंग करने आए। हमने पूछा साहब किस बात की काउंसलिंग करने आए? बोलिए सारे के सारे इंटरनेट पर गलत चीज देखने के आदी हैं, छूटता नहीं इनसे, उस आदत को छुड़वाने के लिए इनको बुलवाया। जितने भी स्पिरिचुअल भक्ति के पाथ पे चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग, जैसे एक बार मैं लंदन में था, तो वहां प्रवचन हुए, तो हंसने की बात कही कुछ और कोई नहीं हंसा, सब लोग बिल्कुल मुंह पे एकदम ऐसे चेहरे पे एक्सप्रेशन के आदमी देख डर जाए ऐसे, और कोई ऐसी की बात पे हंसने को तैयार नहीं। पता चला सारे सीनियर भक्त बैठे थे, हंसते नहीं, एंजॉयमेंट अपना खुद ही खत्म कर दिया कि हमें हंसना बोलना नाइसली सब व्यवहार में। भक्त लोग एक दूसरे को, कई बार हम लोग क्या करते हैं ना भक्त लोग, कि कोई भक्त देखा उसके पैर छू लिए तो वो छेड़छाड़ मानी जाती है ना हमारे इस्कॉन में, कि भाई हम लोग किसी भक्त के पैर छू दो, मेरे पैर छू, फिर वो उसके पैर छूएगा, फिर उसके पैर, ये भी एक लीला है भक्तों की, कि पास टाइम है कि एक दूसरे के पैर छू के एक दूसरे को टीज करना, तो ये सब करना चाहिए, भक्तों के एक दूसरे गले लगना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम लोग इतना अपने आप को घोट लेते हैं अपने अंदर के, बस ना मुझे बात करे कोई, ना मुझे छुए कोई, ना मुझे मेरे से बात नहीं करो, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, सरल स्वभाव में रहना चाहिए। ये बहुत, जैसे चैतन्य महाप्रभु, अब यहां पर चूंकि निर्गुण की बात आई, तो चैतन्य महाप्रभु, निर्गुण मतलब जो निर्विशेषी लोग हैं, जो मायावादी लोग हैं, वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। जब मैं 7वीं क्लास में था, तो मेरा एक दोस्त था संजय, तो मैं उसके घर गया, और वो लोग आर्य समाजी थे, तो हम लोग, मैं उनके घर पहुंचा, तो तो उस दिन दशहरे का दिन था, तुम शाम को दशहरा स्टेडियम में जलाने का प्रोग्राम था और वहां मेला लगता है बहुत बड़ा दशहरे के फेस्टिवल, रावण को जलाने का कार्यक्रम है, तो हम लोग वहां जाने वाले थे दोनों मिलके। तो किसी बात पे मैंने कहा कि आज तो मतलब रावण आज दशहरा है तो रावण को जलाया जाएगा, रावण ऐसे ये बचपन में बात करते जैसे लीला है कि भगवान की, रावण को किस तरह से उसने सीता का हरण किया, भगवान राम ने उसका वध किया, सीता को वापस लाए, तो आज वो दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है कि धर्म की अधर्म पे विजय। तो वो आर्य समाजी थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा हम लोग, उसकी मदर बोली कि बेटा हम लोग जो है ना ये माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का मतलब क्या है कि धर्म की अधर्म पे विजय, यहां तक तो सब ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ना तो कोई राम था ना कोई रावण था, ऐसा लगा जैसे गुब्बारा पूरा भरा हुआ था उसमें हवा निकल गई कि तुम सारा आनंद ही खत्म हो गया उसी सेकंड। जैसे एक मैगजीन है उसका नाम है सच्ची कहानियां, बचपन में हम लोग देखा करते थे मैगजीन को, तो उसमें तरह तरह की क्राइम की स्टोरीज छपती थी और वो स्टोरीज सच्ची होती थी और वो किताब बहुत बिकती थी, लोगों को क्राइम के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। और बिकती क्यों थी, क्योंकि उसमें रियल स्टोरीज है कि फलाने ने फलाने का मर्डर कर दिया, ये कर दिया, तो उस कहानी को पढ़ना चाहते लोग। ऐसी ये भागवतम है, ये भी सच्ची कहानियां हैं हमारे लिए, भागवतम है लोगों के लिए मनोहर कहानियां, सच्ची कहानियां, वो मैगजीन पढ़ते रहो मर्डर की, हम लोग यहां पढ़ते हैं। यहां भी उस तरह के प्लॉट हैं, इंद्र भी तरह तरह के प्लॉट करता है कि ध्रुव की तपस्या भंग करनी है, फिर इसकी तपस्या प्रतुमारा की तपस्या भंग करनी है, तो प्लॉट यहां भी है, लेकिन यहां के प्लॉट बहुत फर्क है। यहां के प्लॉट को पढ़ने के बाद हम लोग भगवान से जुड़ जाते हैं, यहां के प्लॉट्स को पढ़ने के बाद, यहां के षड्यंत्रों को सुनने के बाद, समझने के बाद, महाभारत पूरी षड्यंत्रों से भरी हुई है, द्रौपदी का चीर हरण द्यूत क्रीड़ा सब षड्यंत्र ही तो था, लेकिन उन षड्यंत्रों की कथा में मुक्ति का रास्ता है, मार्ग है। इसलिए हम लोग, क्योंकि जगह जगह भागवतम में आया कि आप कृपा करके हमें इस बारे में बताइए कि उन भगवान के भक्तों ने फिर क्या किया, अगर और बताइए तब जब ये भगवान से कनेक्टेड, नहीं तो मत बताइए, ऐसी बात भागवत में कई जगह पे आई। वो इसलिए कि हम हर चीज को भगवान से जोड़ना चाहते। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से मथुरा वृंदावन की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में वाराणसी में रुके, और वाराणसी काशी विश्वनाथ वो भगवान शंकर की नगरी है, और वहां पे जो मायावादी लोगों का गढ़ है, वहां बड़े बड़े मायावादी इंपर्सेशन। एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे तो बनारस जा रहे थे, तो रास्ते में ट्रेन में सेकंड उस जमाने में थ्री टायर था, थ्री टायर का डिब्बा था, तो कुछ जटाधारी साधु लोग थे, तो उन्होंने वो जो वो पीते रहते हैं स्मोक करते हैं, तो उसमें गांजा वांजा करके तबाह वो चीजें पीते हैं, तो इतना धुआं उन लोगों ने डिब्बे में भर दिया कि हमें चक्कर आने लगे बैठे बैठे। समझने का महाराज इस धुनी को कहीं और रमा लियो, हमारे हम तो यहाँ चक्कर खा गिर के ऊपर से नीचे गिर जाएंगे बर्फ पे से इस चक्कर खा के, और ये क्या चक्कर है भाई तुम लोगों का। तो बोले भैया हम लोगों के तो जो मठ में कोई भी बंदा आता है सबसे पहले यही सिखाते हैं कि अपने आप को डुबा दो इसमें, इस धुएं में उड़ा दो अपने आप को दबा दो। तो वहां मायावादी गढ़ में चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, तो आदि लीला में यह वर्णन है, तो वहां पे उनको चैतन्य महाप्रभु को मायावादियों ने क्रिटिसाइज किया कि सन्यासी है या करेगा या नाचन ना करे वेदांत पाठ करे संकीर्तन। तो कह रहे कि भैया तुम सन्यासी हो और तुम ये क्या उछल कूद मचा रखी, कोई ऐसे नाचता है, ऐसे को भगवान की सेवा पूजा कुछ होती है, क्या गायन क्या सिंगिंग करते हो तुम लोग, वेदांत पढ़ो वेदांत। तो वेदांत का मतलब है कि एंड ऑफ नॉलेज, सारे ज्ञान का अंत। तो मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जाने, बाबू का है या फिर भावों के रसाने। तो ये जो सन्यासी है ये मूर्ख है, ये इलिटरेट है, मूर्ख का मतलब है इलिटरेट है, किसे मालूम ही नहीं वेदांत वगैरह स्टडी करना चाहिए, सन्यासी हो गए ऐसे बेकार के कामों शलगुत बचा कीर्तन में नाचना, ये सब क्या चीज है। तो ये सेंटिमेंटलिज्म ठीक नहीं है, मतलब आप भावुक हो के नाच रहे हैं भगवान के कीर्तन में, आप शांत होकर बैठिए और ये वेदांता को पढ़िए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका कोई विरोध नहीं किया, भक्तों ने कहा भी क्योंकि वो रुके हुए थे तपन मिश्रा के घर, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे शांत रहे। तपन मिश्रा ने कहा कि प्रभु जी ये सब लोग ऐसे ब्लास्फेमी कर रहे हैं, आप इनको कुछ कहने नहीं, और मथुरा आए, मथुरा से फिर वापिस लौटे। जब वापिस लौटे तो लौटते वक्त वो किसी घर रुके, चंद्रशेखर घर रुके, चंद्रशेखर प्रभु के घर रुके, वहां पे उन्होंने प्रसाद तो तपन मिश्रा के यहाँ ही लिया लेकिन रुके चंद्रशेखर के यहाँ। और तब फिर ये बातें उठी कि ये कैसा साधु है, ये कीर्तन करता है, ये नाचता है। और तपन मिश्रा बोले कि प्रभु आपकी ब्लास्फेमी हमसे सही नहीं जा रही, बहुत हमें बहुत बहुत तकलीफ पहुंची क्योंकि आपके बारे में कोई ऐसा कहे तो ऐसा लगता है कि या तो हम उसे मार दें खुद मर जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु तभी एक कोई ब्राह्मण थे वो इन्विटेशन देने आए चैतन्य महाप्रभु को कि मैंने सब लोगों को अपने घर में भोज के लिए बुलवाया, सारे साधुओं को, तो आप भी आइए। चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो रेसिस्ट किया लेकिन फिर मान गए, मान इसलिए गए कि चलो उनका विचार बना गया, अब इनको मायावादियों का इनका टाइम आ चुका, इनको उद्धार करना ही है। तो वो वहां पे जब प्रोग्राम में पहुंचे तो जहां जूते उतरे उतारते हैं लोग बाहर, वहां बैठ गए। अब बाहर बैठ गए, अपने भजन की माला कर रहे हैं अपनी, तो प्रकाशन सरस्वती वहां से आके बोले कि भाई आप यहाँ क्यों बैठ गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के चेहरे से जो चमक और तेज निकल रहा था कि सब लोग वहां देख के ऐसे हो गए, ये तो कहा कि तुम इतने सुंदर इतने अच्छे सन्यासी हो और इस क्या इस चक्कर पड़ गए, वहां पहले अंदर कहीं अच्छी जगह आके बैठो, यहाँ जूतो हो तुम्हें मत बैठो। और फिर कहा कि तुम्हें ये सब वेदांत पढ़ना चाहिए और ये सब चीजें, तब उन्होंने कहा कि मैं कैसे पढ़ लूं, मोरे गुरु मोरे मूर्खा देखी करी लो शासन, कि मेरे गुरु ने कहा कि तू बिल्कुल मूर्ख है, ये सब पढ़ना वढ़ना सब छोड़ वेदांत वगैरह को, और क्या सजेगा कि हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हम हरे हरे, इस संकीर्तन का ही हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। हालांकि प्रभुपाद जी ने कई जगहों पे बताया कि हम लोग भी पढ़ते हैं वेदांत, वेदांत सूत्र अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा ओम नमो भगवते वासुदेव, ये सब ब्रह्म सूत्र वेदांती तो है लेकिन सबको हम लोग बहुत सही तरीके से, जो चैतन्य जो कमेंट्री वेदांत सूत्र के ऊपर रामानुजाचार्य और दूसरे आचार्यों ने दी, हम शंकरा भाष्य वगैरह नहीं पढ़ते जो मायावादी कमेंट्री है, क्योंकि वो लोग तो उसमें भी कुछ मीनिंग निकाल लेते हैं। और ईशोपनिषद लिखी इसीलिए गई कि तुम इसे पढ़ के अपना शांत रहो, पढ़ते रहोगे वो उसके हाथ है नहीं है, पैर है नहीं है, चलते हैं नहीं चलते हैं, ई वॉक डज नॉट वॉक, वो शरीर है कि आत्मा है, आत्मा है कि निर्गुण है सगुण है, लगे रहो इसमें पढ़ने में, जो कि वो कंफ्यूज होना चाहते थे भगवान है तुम इसे पढ़ के ईशोपनिषद कन्फ्यूज रहो सारी उम्र। लेकिन भक्त लोगों को प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर तात्पर्य लिख के भक्तों को जो ज्ञान आज दिया, आज ये मान के चलो कि आज से 25, 30, 40 साल पहले भारत में ना तो ये जो आज भागवत हम लोग जो भी मैराथन का महीना निकला और कई लोगों ने हजारों हजारों भागवतम के सेट स्पॉन्सर किए, भगवद गीता स्पॉन्सर की, वो सब स्कूलों में रखवाई गई, जगह जगह बंटवाई गई, बच्चों को पहुंचाई गई, 400 भगवद गीता अभी हम लोगों ने रिसेंटली बांटी स्कूलों में यूनिवर्सिटीज में, तो ये सब क्यों, इसका प्रभाव आ रहा है। आज भारत में जितनी जागृति है क्योंकि भारत से पूरी दुनिया को ज्ञान मिलना है, भारतवासियों को अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है कि पूरी दुनिया इनको फॉलो करे। फॉलो करने का मतलब जेहाद या क्रुसेड नहीं है, टीचिंग का मतलब है
दन्ते निधाय तिनकं पदयोर् निपत्या काकोशतम एतद् अह ब्रमीमि। हे साधु सकल विहाय दूराद चैतन्य चंद्र चरणे कर्तानुराग। दन्ते निधाय तिनकं, मैं दांत में तिनका रख के बहुत ह्यूमिलिटी के साथ बहुत नम्र स्वभाव से आपको कह रहा हूं, 100 बार प्रणाम करके और दंडवत दे के आपको। हम लोग मारकाट में बिलीव नहीं करते, हम लोग विनम्र भाव से कहते हैं कि हे साधु, ओ लर्नेड मैन, ओ साधु सकल विहाय दूराद, जो भी नॉनसेंस तुमने लर्न किया सारी उम्र वो छोड़ दो। फिर क्या करूं कि चैतन्य चंद्र चरणे करता अनुराग। भगवान चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लो, ये मर्सी हर कलयुग में तक नहीं मिलती, ब्रह्मा के हर युग में नहीं मिले, सहस्र युग पर्यंतम 1000 दिव्य युगों के साइकिल में भी ये हर कलयुग में मर्सी नहीं मिलती। ये चैतन्य महाप्रभु की स्पेशल मर्सी, भगवान कृष्णा की मर्सी इस कलयुग में है, और बड़े बड़े देवता लोग आज चाहते हैं वो इस कौन को ज्वाइन कर लें। बड़े बड़े देवता लोग, उनको लगता है कि जो इस कौन में है, प्रभुपाद जी ने कहा चैंट हरे कृष्णा, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, अटेंड नित्यम भागवत सेवया, तुम्हारा भगवत धाम निश्चित है। कोई दुनिया की, क्योंकि हम लोग सब कृपा सिद्ध हैं, प्रभुपाद जी के पीछे धाई तब पाछे पाछे, हम लोग प्रभुपाद जी के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रभुपाद जी का जो स्कॉन का रस है वो दौड़ रहा है, और हम लोग पीछे पीछे प्रभुपाद जी के दौड़ के चल रहे हैं, प्रभुपाद जी के चरणों की धूल लेके चल रहे हैं। प्रभुपाद जी की कृपा हम लोगों को मिली हुई है, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ भाव से इस्कॉन के इस कार्यक्रम को, ये इस्कॉन कोई आज की चीज नहीं है, प्रभुपाद जी ने जो वेदों में जो हजारों हजारों साल से जो हमारी संस्कृति है उसको भगवान की डिजायर से, क्योंकि रूप गोस्वामी ने जो सारा कुछ प्रोग्राम लिखा, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकम। तो जित रूप गोस्वामी ने भगवान की माइंड को रीड कर समझ, मनोभीष्टम क्या चाहते हैं भगवान, जैसे बैक टू गॉड एंड मैगजीन में एक आर्टिकल किसी डिवोटी ने लिखा, रीचिंग कृष्णा इन इज ओन वे। अब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए, उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 1866 बहुत अच्छा वर्ष है, वेरी पावरफुल, सारा कंक्लूजन है भगवदगीता का। लेकिन 5000 साल के अंदर ही अंदर कितना कंटामिनेशन आया कि पहले तो, और लोगों ने वेदों के हिसाब से मीट खाना शुरू कर दिया, तो करीब 2700 साल पहले भगवान बुद्ध आए, लोगों को मीट खाने से रोका। उसके बाद में जब वेदों को हटा दिया, क्योंकि वेदों के बेस पे लोग मीट खा रहे थे, तो कहा भाई वेदों को मत मानो, हटा दो, पहले मेरे तरफ देखो, मैं कह रहा हूं मत खाओ, लोगों ने मीट खाना रोका। और उसके बाद में जब वेद हटा दिए, भगवान ने खुद बुद्धा के रूप में आके, तो लोग नास्तिक को वेद ना मानिया हो ले नास्तिक, सारे लोग नास्तिक हो गए। तो फिर शंकर भगवान को लाया गया, शंकर भगवान शंकराचार्य रूप में आए, उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि वेदों को दोबारा से एस्टेब्लिश किया, लेकिन इनकम्प्लीट नॉलेज छोड़ दी कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म रियलाइजेशन तक हो गए। वदन्ति तत्तत्विदस् तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान के 3 फीचर हैं, ब्रह्मन् कण कण में भगवान, परमात्मा हृदय में भगवान, और भगवान स्वयं श्याम सुंदर अपने विग्रह में। तो ये ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग है, धीरे धीरे आदमी इसको समझ के आगे बढ़ता है। तो शंकराचार्य ने वेदों की स्थापना दोबारा से की, और बुद्धिज्म को अशोक ने जो फैलाया वो इतना फैलाया कि बाहर ही रह गया, इंडिया में लौट के नहीं आया। इंडिया में 2-4 सांची वांची पटना वटना में, बिहार में 2-4 उनके स्तूप स्तूप बने हुए हैं, बाकी कुछ नहीं, लेकिन
ये जो बुद्धिज्म है ये ईस्ट एशियन का, जैसे चाइना, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहां पे बहुत है आज भी, और अमेरिका में बहुत है बुद्धिज्म, इंडिया में नहीं। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य ने खदेड़ दिया बाहर, वेदों को ले आए। अब लेकिन चूंकि इंपर्सनलिज्म तक मायावाद तक जो निर्विशेष है, ये बताया गया श्लोक के अंदर आया कि निर्गुण, तो निर्गुण तक लिमिटेड रहे शंकराचार्य। एंड में कहा भी भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते, कि तुम मूढ़ लोगो मैंने जो भी कुछ कहा लेकिन एंड में जो मैं कह रहा हूं भज गोविंदम, वो नहीं पकड़ते, बाकी सब पकड़ रखा। तो उसके बाद फिर मध्वाचार्य, जमुनाचार्य, रामानुजाचार्य और अब प्रभुपाद जी, ऑफकोर्स भक्ति सिद्धांत जी, भक्ति विनोद ठाकुर, इन सब लोगों ने परंपरा में उस चीज को दोबारा, वैष्णविज्म को, भगवान विष्णु कृष्णा की पूजा स्थापना, फिर वो जो मंदिर बने, मंदिरों में रंगनाथ जी के मंदिर, तिरुपति के मंदिर, वो सारे रामानुजाचार्य के समय पे 1100 के अंदर बसाए गए, बनाए गए, मूर्ति पूजा का पूरा सिद्धांत तो सब समझाया गया उनके द्वारा। तो ये प्रोग्रेशन है। और आज चैतन्य महाप्रभु का जो 525 साल पहले आगमन हुआ, अवतरण हुआ, उन्होंने इस हरि नाम संकीर्तन को कहा कि दुनिया के गली गली नगर अमार आज्ञा गुरु या तारो ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तुम मेरी आज्ञा से गुरु बन जाओ। गुरु का मतलब ये नहीं है कि सैफरन कपड़े पहनो, गुरु का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे 1500 डिसाइपल होने चाहिए, गुरु का मतलब ये है कि जो ज्ञान को आगे बढ़ाए। गुरु का मतलब है कि जो शास्त्रों में लिखी हुई बात है उसको आगे बढ़ाए। अगर हम लोग, जैसे एक बार यमुना माता जी ने बहुत बढ़िया गुलाब रसमलाई वगैरह बनाई, तो प्रभुपाद जी ने पूछा किसने बनाई, कि यमुना माता जी ने बनाई, तो कहा कि उनको बताओ कि ये सबको सिखाएं, अगर सिखाएंगी नहीं तो विद्या चली जाएगी। इसलिए हम लोग अगर आज प्रीचिंग नहीं करते, मैं कहता हूं कि प्रीचिंग पे जाने का मतलब ही नहीं, आप सड़कों पे ही निकले, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आप ट्रेन में हो, बस में हो, एरोप्लेन, मैंने डिवोटीज को देखा एरोप्लेन में बैठे हुए थे, एक बार मैं फ्लाई कर रहा था भुवनेश्वर, तो डिवोटीज बैठे हुए थे और वहां जो बगल में बैठा हूं तो किताब विताब भी दे दी वहीं की वहीं, सब समझा दिया मंत्र, सब समझा दिया 5 मिनट के अंदर, 1 घंटे में फ्लाइट में ही वही मंत्र भी बता दिया, इनिशिएशन कर दिया उसका, वहीं जो बगल बैठा उसको पार कर दिया वहीं की वहीं, जहां भी बैठ जाओ। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते इसका नुकसान क्या होगा, पहली बात तो ये विद्या ही चली जाएगी, कुछ भी याद नहीं रहेगा, प्रीचिंग नहीं करते कुछ भी याद नहीं रहेगा, और दूसरी बात खुद माया में चले जाएंगे। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, हमारा ऑफेंस क्या है, हम लोग फ्रंट लाइन पे हैं, दूसरे के माया के उसमें जाके गोल मार रहे हैं धड़ाधड़, एक के बाद एक के बाद एक, अभी गोल बचा नहीं रहे हैं, गोल कर रहे हैं जाके, कैसे गोल कर रहे हैं कि बुक बांट के, क्योंकि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च जदयतुकम, के जब हम भगवान वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव कृष्ण के चरणों में भक्ति, भक्ति योग ना प्रयोजिता, हम लोग जुड़ गए हैं भक्ति से, जुड़ गए अपने आप को, योग हमें जोड़ लिया है, भक्तों के संग में आ गए हैं, और अपने आसपास हर भक्त से हमारी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उनके और हमारे विचारों में, सेवा करने के मेथड में फर्क हो सकता है, तो लाइक माइंडेड 2-4 भक्तों के साथ में जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर कहीं विचार बहुत ज्यादा नहीं मिलते तो थोड़ा सा अलग को हट जाना चाहिए, ऑफेंस नहीं करना चाहिए। तो वासुदेव भगवती भक्तियों का प्रयोजिता, अब उससे क्या होता है जब भगवान की सेवा में लगे, जनयति आशु वैराग्यम, जनयति मतलब पैदा होता है, आशु मतलब क्विकली, वैराग्यम मतलब कि भैया ये शरीर छोड़ के जाना है, यहां किसी का कुछ रखा नहीं है, मंदिर में भगवान की, क्योंकि मैंने देखा ये बात कि खुद अपनी लाइफ में देखा, जितना आप देंगे ज्ञान को और धन को मंदिर की सेवा में, भक्तों की सेवा में, उतना बढ़ता है, ये प्रैक्टिकल बात है, खुद देखा मैंने, जितना आप देंगे उतना ही वापिस आएगा। जैसे होती फल बेचने वाली, भगवान कृष्णा छोटे से बब के फल ले लो फल ले लो, वो आए कि बेटा फल तो तू ले रहा लेकिन लाएगा, तो वो अपनी 2 मुट्ठियों में जरा सा अनाज लेके आए, और वो भी आते आते सारा गिर गया, ठीक है बेटा, तू इतना सुंदर है, बस तू सब कुछ ले ले लाला, मुझे जो तूने दिया ठीक है। और जब वो घर पहुंच देगा, पूरी टोकरी में हीरे जवाहरात रखे हुए थे। भगवान किसी का रखते नहीं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग कहते मैं इतना बड़ा आदमी हूं, ये करता हूं वो करता हूं, कह होंगे बड़े, अभिमान नहीं करना, हम्बल। भगवान की सेवा में बहुत शुद्ध सुसंस्कृत तरीके से, बहुत प्रेम से जुड़ना है। कोई ऐसा ऑफेंस नहीं करना है कि मैं बहुत बड़ा डोनर हूं, या मैं बहुत बड़ा पीचर हूं, या मैं बहुत बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, अभिमान नहीं रखना है, हम्बली। तो ये यहां पे जो मायावाद की बातें आई, यहां पे हरि नाम हरे कृष्णा मंत्र की बातें आई, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बातें आई, प्रचार करने की बातें आई, अपना चरित्र निर्माण की बात आई, राष्ट्र निर्माण की बात आई। हम लोग हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसते, हम लोग तो सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं है, सनातन धर्म हमारा वो है, चीनी का धर्म मीठा होना, नमक का धर्म नमकीन होना, स्नेह का धर्म जहरीला होना, बच्चे का धर्म शैतानी करना है। ऐसे ही हमारा धर्म आत्मा का धर्म है। हरे कृष्णा।